नमस्कार भारत, तारीख 2 सितंबर, दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत की कई बड़ी ट्रेड यूनियनें हैं आज एक दिन की हड़ताल पर।
रेलवेज में, इंश्योरेंस में, डिफेंस में, तो जो कोर सेक्टर्स हैं इनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत लाइए। मिनिमम वेज जो है पूरे देश भर के अंदर 15,000 मिनिमम वेज घोषित होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के सभी मिनी स्टील प्लांट कल से ही हैं बंद। भारत और पाकिस्तान के कलाकारों ने आपस में बात करने का जरिया बनाया अपने गीतों को।
उसकी सब फिल्मों गानों में मुझे दहशत गर्द दिखाते हैं यहाँ मेरे।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अविनाश दत्त से। भारत में आज कई ट्रेड यूनियनों ने श्रम कानूनों के प्रस्तावित बदलावों, वेतन वृद्धि में देर और निजीकरण के खिलाफ देश भर में हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल में इंटक, एटक, सीटू के अलावा कई सरकारी बैंक, बीमा कंपनियों के कर्मचारी संगठनों ने भाग लेने की बात भी कही है। इस हड़ताल से कई सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों में कामकाज ठप रहने की आशंका है। इस हड़ताल की वजह से कई निजी व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। इन संगठनों में से कई संगठनों के नेताओं ने अरुण जेटली के साथ मुलाकात की थी, लेकिन वित्त मंत्री के साथ हुई मुलाकात बेनतीजा रही है। पाकिस्तान के शहर लाहौर के यूहानाबाद में मौजूद 2 गिरजाघरों पर आत्मघाती हमलों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार 3 कथित चरमपंथी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस का दावा है कि यह घटना कल देर रात लाहौर के नज़दीक घटी है। पुलिस के अनुसार तीनों गिरफ्तार चरमपंथियों को हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाया गया था। वहाँ से लौटते हुए कथित रूप से इनके साथियों ने बचाने के लिए हमला किया, जिसके बाद हुई गोलीबारी में तीनों चरमपंथी मारे गए हैं। पुलिस का ये भी दावा है कि इस घटना में उसका एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रोमन कैथोलिक लोगों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने घोषणा की है कि चर्च से जुड़े सभी पादरियों को अधिकार होगा कि वो महिलाओं को धार्मिक क्षमा प्रदान कर सकें जिन्होंने किसी भी कारण से गर्भपात कराया है। वेटिकन से जारी एक खत में पोप ने कहा है कि वो ऐसी कई महिलाओं से मिले हैं जिन्होंने गर्भपात का दंश झेला है। कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार गर्भपात एक बहुत ही बड़ा पाप है। लंदन में फादर स्टीफन वैंग ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि पोप ने अपनी बात बहुत ही खास ढंग से कही है और उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि पोप ने उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया है जो गर्भपात कराने की पीड़ा को झेल रहे हैं और उनके अनुसार इस तरह के लोगों को नज़रअंदाज करना गलत है। लंदन के फादर स्टीफन वैंग ने बीबीसी को बताया। अमेरिका में संघीय अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई में 90 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 16 ऐसी प्रयोगशालाएँ भी बंद की हैं जहाँ वो दवाएँ बनाई जा रही थीं जिनसे शरीर की क्षमता में असामान्य रूप से बढ़ोतरी होती है। US ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार देश के करीब 20 राज्यों में हुई इस कार्रवाई में उसने सैकड़ों किलो दवाएं और हजारों लीटर केमिकल पकड़े हैं। इस कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने इस तरह की दवाओं के वैश्विक कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश भी की है। गूगल ने नया लोगो जारी किया है। गूगल का यह नया लोगो पुराने लोगों की तरह रंगीन है, लेकिन इसके अक्षरों के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। bbchindi.com के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को मोबाइल पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से करते हैं। भारत के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। श्रम संगठनों ने श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल में शामिल न होने का फैसला किया है। पिछले दिनों हुई मंत्रियों के समूहों के साथ बैठक का कोई नतीजा न निकलने के बाद यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ट्रेड यूनियन की मांगों और अन्य कई मुद्दों पर हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र ने बात की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सचिव अमरजीत कौर से।
इस हड़ताल का आह्वान तो 11 ट्रेड यूनियंस ने किया था और फिर फेडरेशंस और एसोसिएशंस और बहुत सी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया था, और 26 मई को कन्वेंशन हुई थी जिसमें यह फैसला हुआ। गवर्नमेंट ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे फाइनेंस मिनिस्टर की लीडरशिप में, उसके साथ बातचीत के बाद 28 तारीख को बीएमएस ने निर्णय लिया कि वो हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते। बाकी जो 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, वो इस हड़ताल को जारी रखने का फैसला ली।
क्या प्रमुख मांगे हैं कि
जिनकी वजह से हड़ताल? मैं उस पे आना चाह रही हूँ कि जो हमारी फिर 10 की बजाय 12 मांगे हो गई, उनमें कुछ तो पॉलिसी मैटर हैं, जैसे हम महंगाई को रोकने के लिए हमने कदम सुझाए थे कि यूनिवर्सल पीडीएस करो, फ्यूचर ट्रेडिंग को बंद करो, होर्डिंग को रोको, कुछ कंक्रीट स्टेप्स सुझाए थे हमने महंगाई रोकने के लिए। उस मांग पे सरकार का ये कहना है कि महंगाई तो कम हो गई है, जबकि ग्राउंड रियलिटी जस्ट इसके अपोजिट है। हमारी ये मांग थी कि आप एफडीआई ला रहे हैं रेलवेज में, इंश्योरेंस में, डिफेंस में, तो जो कोर सेक्टर्स हैं इनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत लाइए। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि ये तो निहायत ही जरूरी है, तो उन्होंने हमारी इस मांग को दरकिनार कर दिया। हमारी तीसरी मांग थी कि जो पब्लिक सेक्टर हैं और प्रॉफिट गिविंग है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट आप नहीं करो, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम तो डिसइन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, गवर्नमेंट की परसेप्शन में डेवलपमेंट उसके बिना हो नहीं सकता है। इसके अलावा हम लोगों की डिमांड है कि मिनिमम वेज जो है वो पूरे देश भर के अंदर 15,000 मिनिमम वेज घोषित होना चाहिए। ये हमारी जो मांग थी, इसके ऊपर पिछली सरकार ने भी कुछ चीजें मूव की थी और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट इस पे आई थी, तो हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अभी जो हमें नेगोशिएशंस में रखा वो और भी नीचे धकेलने वाली प्रपोजल
जी
थी।
अमरजीत जी, एक चीज ये जो भारतीय मजदूर संघ है, उसने जो सरकार के साथ बातचीत हुई या सरकार की अपील हुई, उसके बाद उसने कहा कि हमें सरकार को कुछ और मौका देना चाहिए, तो क्या दूसरे ट्रेड यूनियंस को ऐसा नहीं लगता है कि सरकार अगर कुछ मौका चाह रही है तो उसको दिया जाए, या फिर ये हड़ताल करना एक दबाव बनाने की कोशिश है?
बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि पॉलिसी मैटर्स पे तो सरकार ने सीधे दरकिनार कर दिया ट्रेड यूनियंस को, वो आगे नेगोशिएशन भी नहीं करना चाहते, रिकंसिडर भी नहीं करना चाहते। हमें नहीं समझ में आती है कि बीएमएस को इसमें कौन सा पॉजिटिव दिखा, क्योंकि जितने भी इश्यूज पे बात हुई, गवर्नमेंट ने किसी चीज के ऊपर ये नहीं कहा कि हम आपकी ये बात मान रहे हैं।
एक दिन की जो हड़ताल है, तो इसमें कौन से लोग शामिल है? इसमें
रेलवेज को छोड़ के सभी जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो माइनिंग एरियाज के हैं, कोल हो या ऑयल हो, या वो डिफेंस का सेक्टर हो, वो टेलीकॉम का सेक्टर हो, या कि वो पोर्ट एंड डॉक का एरिया हो, या वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो हड़ताल के ऊपर नहीं आ रहा है, पूरा फाइनेंस सेक्टर इसमें शामिल है।
ये थी इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सचिव अमरजीत कौर। देशव्यापी हड़ताल के बाद अब एक और हड़ताल। छत्तीसगढ़ के सभी 185 मिनी स्टील प्लांटों में मंगलवार से ही तालाबंदी कर दी गई है। इन स्टील प्लांटों के संचालकों का आरोप है कि उन्हें एक ओर तो चीन से आयात होने वाले स्टील का मुकाबला करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में हाल ही में बिजली की कीमत में 27% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस कारण स्टील प्लांट चलाना मुश्किल हो गया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 मजदूर मंगलवार से सड़कों पर आ गए हैं। राज्य में स्पॉन्ज आयरन और मिनी स्टील प्लांट की सभी 185 इकाइयों में कल से ताला बंद कर दिया गया है। देश में 27% स्टील और स्पॉन्ज आयरन का उत्पादन करने वाले छत्तीसगढ़ की इस तालेबंदी का असर पूरे देश पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट में हर महीने 3,20,000 मेट्रिक टन एनगार्ड एवं बिलेट का उत्पादन होता है और इन प्लांटों में हर दिन 400 मेगावाट की बिजली खपत होती है। इस बिजली का 150 करोड़ रुपए हर महीने का भुगतान किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 27% तक की बढ़ोतरी कर दी है। छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सुराना का कहना है कि पिछले एक साल में विदेशी स्टील के आयात में 69% की तेजी आई है। ऐसे में बिजली की बढ़ी हुई दर के बाद छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट चलाना मुश्किल है।
एक करोड़ का बिल यदि किसी का आएगा, पहले 80 लाख आता था, 20 लाख का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, तो हमने उनको यही कहा कि 27% का टैरिफ इंक्रीज करना उचित नहीं है, इसको तत्काल वापस ले, नहीं तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। 7 रुपये यूनिट की बिजली में ये उद्योग नहीं चल सकता। ये उद्योग में MP और गुजरात की टैरिफ अभी आज की डेट में छत्तीसगढ़ के बराबर हो चुकी है, तो यहाँ का बना हुआ माल बाहर जा नहीं सकता।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता रमेश वरलियानी का कहना है कि सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।
यदि छत्तीसगढ़ के उद्योग बर्बाद हो जाएंगे तो उनके साथ हजारों मजदूरों का पेट और रोजगार जुड़ा हुआ है, वो सड़क पर आ जाएंगे। तो सरकार को बिजली के दरों में कमी करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि 5 कंपनी बनाने की कोई औचित्य नहीं है, 2 कंपनी से काम हो सकता है, स्थापना व्यय में कमी हो जाएगी और बिजली दरों में आप कटौती कर सकते हैं।
हालांकि मजदूर नेता नंद कश्यप के पास अपने तर्क हैं।
जब छत्तीसगढ़ में सारे हिंदुस्तान के लोग आके बिजली बना रहे हैं और हम उनको कोयला दे रहे हैं, उसके बदले में प्रदूषण झेल रहे हैं, अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती होनी चाहिए, मजदूरों के अंदर में भी, छोटे उद्यमियों के अंदर में और कुटीर उद्योग के अंदर में एक हताशा और गुस्सा पैदा होते जा रही है।
हमने इस बारे में राज्य के उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल से बातचीत की तो इन दिनों अमरीका के दौरे पर गए अमर अग्रवाल ने दावा किया कि इस मामले को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन संकट ये है कि अगर छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांटों में तालाबंदी जारी रही तो भवन निर्माण से संबंधित सामग्री और लोहे की कीमतें बढ़ सकती हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
पिछले दिनों केंद्रीय नौकरशाही में कुछ फेरबदल हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव गृह सचिव का था। गृह सचिव LC गोयल को हटाकर राजीव महर्षि को नया गृह सचिव बनाया गया है। केंद्र में NDA सरकार बनने के बाद से महर्षि तीसरे गृह सचिव हैं। हालांकि गोयल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS लिया है, लेकिन चर्चा यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री की नाराजगी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, यही जानने की कोशिश की है समीर आत्मज मिश्र ने इस रिपोर्ट में।
पूर्व गृह सचिव LC गोयल पिछले कुछ दिनों में पद छोड़ने वाले तीसरे टॉप ब्यूरोक्रेट हैं। इस साल जनवरी में ही विदेश सचिव सुजाता सिंह और DRDO के चीफ अविनाश चंद्र ने भी अचानक पद छोड़ दिया था। LC गोयल के अचानक VRS लेने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इसके पीछे गृहमंत्री राजनाथ सिंह की नाराजगी बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि उनकी कार्यप्रणाली से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे। जानकार इस मामले में पिछले दिनों हुए नगा समझौता और तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई में देरी को वजह मानते हैं। लंबे समय से गृह मंत्रालय कवर करने वाले अमर उजाला के पत्रकार गुंजन कुमार कहते हैं,
देखिए अभी तो ये ओपन सीक्रेट है कि ये सेंट्रलाइजेशन जो है सरकार में NDA गवर्नमेंट में ऐसा एक प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सब कुछ गाइडेड होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए हर मंत्रालय में तो है और वो अफसरशाही से वो खुलकर काम करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सुरक्षा कवच देने की बात जब आती है तो सरकार अभी हाथ खींच रही है। शुरुआती दिनों में ही इन्होंने कहा था कि मैं पूरा प्रोटेक्शन दूंगा ब्यूरोक्रेट्स को अगर वो देश हित में कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा चुके होता हुआ नहीं दिख रहा है और जो ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को भुगतना पड़ रहा है।
गुंजन कुमार का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार उन मीडिया रिपोर्ट्स से भी नाराज थी जिनमें कहा गया था कि समझौते के लिए गृह मंत्रालय से राय नहीं ली गई। इसी के बाद से LC गोयल पर रिटायरमेंट का दबाव बढ़ने लगा। गुंजन कुमार कहते हैं,
कहा जाता है कि नागा समझौते को लेकर जो गृह मंत्रालय को लूप में नहीं रखा गया उसकी शिकायत की थी, तीस्ता सीतलवाड़ के NGOs को लेकर भी इन्होंने अपने एक ऑब्जेक्शन रखे थे कि नहीं इस मामले को इतना तूल ना दिया जाए, सन TV में जो बंधुओं का मामला था उसको लेके भी गोयल साहब के ऊपर काफी प्रेशर था इस बात को लेके कि उनके जो सन TV को रिन्यूअल के लिए और उनके जो प्राइवेट FM चैनल्स हैं उसको हरी झंडी देने के लिए जो सुरक्षा मामलों की जो हरी झंडी होती है।
वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस बात को लेकर खासी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से बच रहा है और इसे प्रशासनिक मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी के रूप में देख रही है। पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता शकील अहमद कहते हैं,
इससे ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह डिमोरलाइज होगी। गृह सचिव जैसे संवेदनशील पद को म्यूजिकल चेयर बना देना ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है जब पावर टोटल PMO में सिमट के चला गया है और किसी मंत्री को भी अपने मंत्रालय के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है।
इसी साल फरवरी में तत्कालीन गृह सचिव अनिल गोस्वामी पर CBI जांच को प्रभावित करने के आरोप लगने के बाद उन्हें हटा दिया गया था।
उन पर शारदा घोटाले के अभियुक्त और पूर्व मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी टालने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाने का आरोप था। उनकी जगह पर एलसी गोयल को 5 फरवरी को 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। वजह चाहे जो हो, जानकारों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर यदि इतनी जल्दी तबादले होंगे तो सवाल उठने लाजमी हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है अखबारों के पन्ने पलटने का। अविनाश दत्त मौजूद हैं, अखबार के पन्ने पलट चुके हैं, क्या कह रहे हैं अखबार आज?
अखबार मोहनलाल, हर तरफ इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा हत्याकांड की बात पहले खबर पे, माफ कीजिएगा, पहले पन्ने पर बनी हुई है। हर अखबार में कम से कम तकरीबन रोज 5-7 खबरें होती हैं जो कि एक्सक्लूसिव कह के वो छापते हैं, और
हर रोज एक नया एंगल आता है,
हर रोज एक नया बात होती है, और ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से होती हैं, इसलिए इस बारे में ज्यादा बात क्या करूं, लेकिन ये हर अखबार के पहले पन्ने पर तो है ही। इसके अलावा अमर उजाला मेरे सामने है, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली खबर है, राष्ट्रीय पर्वों पर मदरसों में तिरंगा फहराना अनिवार्य, हाईकोर्ट यूपी सरकार को दिया आदेश, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, और ये बरेलवी संप्रदाय ने इसका फैसले का स्वागत किया है। देवबंद ने ज़रूर कहा है, दारुल देवबंद ने, कि भाई जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं देख लेते तब तक वो किसी चीज के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।
और दरअसल अविनाश, ये जो मामला है ये अलीगढ़ के एक सज्जन हैं जिन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में, और उसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जवाब दे।
जी, और हिंदुस्तान टाइम्स मेरे सामने है, ये इसमें छपी हुई है खबर, नीतीश चीटिंग पीपल मोदी, ये मोदी की जो भागलपुर की रैली थी उसके बारे में जिक्र रही है ये खबर, और भी कई जगहों पर है। हिंदुस्तान टाइम्स के ठीक नीचे लिखा हुआ है 150 मिलियन वर्कर्स विल गो ऑन स्ट्राइक टुडे, यानी 15 करोड़ लोग कामकाजी लोग कर्मचारी आज हड़ताल पर चले जाएंगे, ये खबर और भी दिख रही है। दैनिक जागरण ने कह रहा है 22 साल बाद लंका फतेह। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश दत्त। और अब एक रिपोर्ट भारत प्रशासित कश्मीर से। वहां पर चरमपंथ एक नए रूप में उभर रहा है, जंगलों में छिपे स्थानीय युवक हथियारों से लैस होकर सोशल मीडिया पर अपनी सशस्त्र तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां परेशान हैं, और अब प्रदर्शनकारियों ने इन चरमपंथियों की बड़ी तस्वीरें धरनों के दौरान लहराना शुरू किया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
21 वर्षीय बुरहान मुजफ्फर वानी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया से बाहर आकर शहर की दीवारों पर देखी जा सकती हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बुरहान के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, लेकिन वो हर हफ्ते फौजी वर्दी में सशस्त्र होकर साथियों के साथ नई फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं। ताजा वीडियो संदेश में बुरहान ने कश्मीरी युवाओं से कहा है कि वो भारत के विरोध में जिहाद के लिए इनके घुट में शामिल हो जाएं। बुरहान से प्रेरित होकर दक्षिणी कश्मीर में कई युवक जंगलों में रोपोश हो गए हैं, इनमें से कई मुठभेड़ों में मारे गए। तालिब हुसैन शाह इन्हीं में से एक थे, वो नागपुर से फिजियोथेरेपी की डिग्री लेकर लौटे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में इतिहास में एमए भी किया। तालिब हुसैन पिछले दिनों एक मुठभेड़ में मारे गए। तालिब के भाई फिरदौस शाह कहते हैं कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर पुलिस इनके पीछे थी और अंत था वो चरमपंथियों से जा मिले।
2010 में ये नागपुर में थी, लेकिन जब ये नागपुर से वापस आए तो इमीडिएटली आफ्टर दैट पुलिस वालों ने इनको समन किया, तो पुलिस स्टेशन आके इनको कोर्ट में चालान पेश किया कि 2010 के एजिटेशन में भी इनका हाथ था, जबकि 2010 में ये नागपुर में थे। उसके बाद उन्होंने जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया तो ये इस कंक्लूजन पे आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से कि अननेसेसरली जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो यूथ से या जो थर्ड जनरेशन कश्मीर के हैं इन पे जुल्म और सितम हो रहा है।
श्रीनगर में तैनात भारतीय सेना की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रोता साहा ने तबादले से जरा पहले संवाददाताओं से बातचीत में इस बात की पुष्टि कर दी कि कश्मीर में स्थानीय चरमपंथियों की संख्या बढ़ रही है।
In all of 2014 there were 64 local recruitments.
जनरल साहा ने बताया कि स्थानीय चरमपंथियों की संख्या पिछले वर्ष से ही बढ़ रही है। इनका कहना है कि इसके विरोध में सेना और पुलिस ने साझी रणनीति बना रखी। गौरतलब है दक्षिणी कश्मीर में तालिब शाह की तरह ऐसे कम से कम 10 युवक थे जो उच्च शिक्षा के बावजूद चरमपंथी घुटों में शामिल हो गए। इनके वीडियो वक्तव्यों से लगता है कि ये 1990 की तरह ही कश्मीर में एक नए सशस्त्र आंदोलन की इच्छा रखते हैं। उस वक्त तो भारत ने तुरंत चरमपंथियों के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा था, क्या इस बार भी ऐसा होगा? मैंने बात की विश्लेषक डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के साथ।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में परेशान थी पंजाब की वजह से, जिसका बहुत ही भारी कीमत उन्हें देनी पड़ी। सोवियत यूनियन का असर अफगानिस्तान में देख चुकी थी और इकोनॉमिकली हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब थे। इन हालात ने उनको मजबूर कर दिया उस वक्त रेस्पॉन्ड करने में। इस वक्त बीजेपी है, इनका इंसर्जेंसी की तरफ एक रवैया रहा है कि वो छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, हम एक बड़ी पार्टी हैं और हम चूंकि बड़ी पार्टी हैं तो इसलिए हम सर्वाइव कर लेंगे।
कश्मीर में महंगे मोबाइल फोन्स और दूसरी सुविधाओं से लैस पढ़े लिखे चरमपंथियों की गतिविधियां ऐसे समय पर शुरू हो गई हैं जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है और सीमा पर भी युद्ध के बादल मंडला रहे हैं। ऐसे में सशस्त्र युवकों की वीडियोस की सोशल मीडिया पर प्रशंसा भी हो रही है। इस डरावने घटनाक्रम पर आम जनता भयभीत भी है और हैरान भी। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
भारत और पाकिस्तान की सीमा से फायरिंग और हताहतों की खबरें अक्सर मिलती रहती हैं। पिछले दिनों दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को मिलना था, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ इतना तेज चला कि दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। लेकिन अगर सरकारें आपस में बात नहीं कर सकती तो क्या दूसरे तरीके नहीं आजमाए जा सकते? भारत और पाकिस्तान के कुछ कलाकारों ने एक रास्ता दिखाया है। पहला गीत भारत की ओर से दागा गया था, जवाब मिला पाकिस्तान से। दिल्ली से सुहेल हलीम की रिपोर्ट।
मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है। मेरे सामने वाली सरहद।
इंडिया और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के दरमियान तो बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन फनकार हैं कि मानते कहाँ हैं।
मेरे जैसा दिखता है वहाँ मुल्ले यूट्यूब बैन करे, यहाँ पंडे किसने से घबराए। वहाँ मुल्ले यूट्यूब बैन करे, यहाँ पंडे किसने से घबराए।
राहुल राम और उनके ग्रुप ऐसी तैसी डेमोक्रेसी का ये पैगाम बहुत से दिलों को छू रहा है, सरहद के इस पार भी और उस पार भी।
मैं आपको बताऊं एक चीज़, इस ये जब फेसबुक पे इसका वर्जन डाला 15,000 से ऊपर कमेंट आए, जिसमें से 90% कमेंट पाकिस्तान से हैं, और उस 90% में से 90% कह रहे हैं क्या बात है भाइयों, मज़ा आ गया। लोगों में कितनी इच्छा है कि ऐसे हंसी व्यंग एक दूसरे को ऐसे देखो।
सरहद पार दुश्मन की जानिब से भी जवाब आया है, न कोई गोलाबारी न घनगरज, बस मौसीकी के सुरताल।
उसकी सब फिल्मों गानों में मुझे दहशत गर्द दिखाते हैं, यहाँ मेरे स्कूल में टीचर भी उसे दुश्मन कह के बुलाते हैं। भारत अखंड का पाठ उधर, यहाँ लाल किले पे झंडा है। मेरे सामने वाली सरहद पे सुनते हैं कि दुश्मन रहता।
अल्फाज पाकिस्तानी फौज के एक मेजर के हैं, जवाबी कार्रवाई के प्रोड्यूसर खावर आजहर।
मेरे ख्याल में दोनों गानों में जो एक चीज कॉमन है कि दोनों गाने सच पे मबनी, जो सोच एक आम शहरी के जेहन में गर्दिश कर रही है शायद उसकी अकासी करते हैं। और मेरा जिंदगी का तजुर्बा यह है कि अगर आप सच्ची बात चाहे वो किसी भी पैराए में कहें वो अपील जरूर करती है।
वहाँ RSS की सेना है, यहाँ जैद का मंजन बिकता है। मेरे सामने वाली सरहद पे सुनते हैं कि दुश्मन रहता है।
मेरे ख्याल से सियासतदान जिस तरह भी बात करते हैं उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, वो सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और शायद इसी वजह से हमने अपने इस प्लेटफॉर्म का या इस कैंपेन का नाम रखा है ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। मगर आवाम की तो कोई कंपल्शंस नहीं हुआ करती, हम तो आवाम हैं।
इन गानों में आरजुएं और उमंगें हैं, मायूसी और तल्ख हकीकत भी।
अब आप दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइलें खड़े लेके खड़े हो, आप यूं करके खड़े हो न्यूक्लियर मिसाइल लेके, अब ना वो फेंकेंगे ना हम फेंकेंगे, वो दोनों जानते हैं। और अगर हो गया तो फिर ख़त्म है, एंड ऑफ स्टोरी है। फिर क्या है, जब पूरी दुनिया ही खत्म तबाह हो जाएगी तब तो एंड ऑफ स्टोरी है। हमें क्या है, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे।
बम गिराना आसान है और वीसा मिलना मुश्किल है, डेमोक्रेसी।
इनका पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सुहेल अली, BBC, दिल्ली।
बस दो फैमिली की चांदी है, वहां भुट्टो है, यहाँ गांधी है मेरे सामने वाली सरहद पे, कहते हैं दुश्मन रहता है पर गौर से देखा जब उसको वो तो मेरे जैसा दिखता है, वो तो मेरे जैसा दिखता है।
इस रिपोर्ट के बाद अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा की उस याचिका पर आज सुनवाई है जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मन भेजने की मांग की है। कोड़ा ने पूर्व ऊर्जा सचिव आनंद स्वरूप और पूर्व माइनिंग सचिव जयशंकर तिवारी को सम्मन भेजने की मांग भी की है। टाटा समूह की कंपनी लैंड रोवर आज भारत में अपने डिस्कवरी मॉडल को लॉन्च करेगी। गाड़ी के डीलरों ने इस गाड़ी के लिए बुकिंग्स लेना शुरू कर दिया है। इस कंपनी की बेहद महंगी फोर व्हील एसयूवी की मांग भारत में जोर पकड़ रही है। और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज से भारत के दो दिन के दौरे पर हैं। उनके साथ एक 80 लोगों वाला दल भी है। अमीरात का दल भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के मामलों के लिए बनाए गए एक विशेष आयोग की बैठक में भी भाग लेगा।
और अब बात करेंगे खेल की खबरों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आखिरकार श्रीलंका को उसी की जमीन पर टेस्ट सीरीज में हराने का भारत का सपना 22 साल बाद एक बार फिर पूरा हुआ। हालांकि कोलंबो में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने अपनी ओर से मैच बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 110 रन की शतकीय पारी भी खेली और उन्हें अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल परेरा का बखूबी साथ भी मिला जिन्होंने 70 रन बनाए, वो भी ऐसे समय जब श्रीलंका के 5 विकेट 107 रन पर गिर चुके थे। श्रीलंकाई पारी 268 रन पर सिमटी और भारत ने 117 रनों से मैच और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। श्रीलंका का आखिरी विकेट नुआन प्रदीप के रूप में गिरा जो अमित मिश्रा की गेंद पर LBW हुए। भारत के ईशांत शर्मा ने 32 रन देकर 3 और आर अश्विन ने 69 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। मैच समाप्त होने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा,
Making changes and watching guys bowling in partnerships has been very very pleasing because it just makes your job very easy.
परिवर्तन के बाद उन्हें साझेदारी में गेंदबाजी करते हुए देखना आनंदकारी रहा क्योंकि उन्होंने काम बहुत आसान कर दिया। उन्हें पता था कि अगर एक गेंदबाज विकेट ले रहा है तो दूसरे को रन रोकने हैं और दबाव बनाना है। ये सीरीज गेंदबाजों की रही क्योंकि उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा मैंने जितना भी टेस्ट क्रिकेट देखा है उसमें चेतेश्वर पुजारा की पारी विश्व स्तरीय रही। कप्तान विराट कोहली के शब्द। पूरी सीरीज में 21 विकेट अपने नाम करने वाले भारत के आर अश्विन मैन ऑफ द सीरीज बने जबकि पहली पारी में शतक जमाने वाले चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द मैच रहे। इस सीरीज में भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर के 200 विकेट भी पूरे किए लेकिन उन पर और श्रीलंका के दिनेश चांदीबल पर खराब व्यवहार के कारण एक एक मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर बैंकॉक में जारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के पूर्व चैंपियन शिव थापा, विकास कृष्ण और एल देवेंद्र सिंह सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ उन्होंने पदक तो पक्का किया ही साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने का हक भी हासिल कर लिया।
और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य खबरें एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। भारत में आज कई ट्रेड यूनियनों ने श्रम कानूनों के प्रस्तावित बदलावों, वेतन वृद्धि में देर और निजीकरण के खिलाफ देश भर में हड़ताल बुलाई है। पाकिस्तान के शहर लाहौर के जहानाबाद में मौजूद दो गिरजाघरों पर आत्मघाती हमलों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार 3 कथित चरमपंथी कल देर रात पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। रोमन कैथोलिक लोगों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने घोषणा की है कि चर्च से जुड़े सभी पादरियों का अधिकार होगा कि वो उन महिलाओं को धार्मिक क्षमा प्रदान कर सकें जिन्होंने किसी भी कारण से गर्भपात कराया है। अमेरिका में संघीय अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई में 90 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और 16 ऐसी प्रयोगशालाएं बंद की हैं जहां दवाएं बनाई जा रही थीं, वो दवाएं जिनसे शरीर की क्षमता में असामान्य रूप से बढ़ोतरी होती है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे विश्व भारती लेकर हम फिर हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को तब तक विदा दें, नमस्कार। Oh,